बालाथल के मध्यवर्ती स्तरों से हड़प्पा संस्कृति के मृदभांड मिले हैं जो आपसी संपर्क के द्योतक हैं। बालाथल से कतिपय ऐसे पात्र खंड मिले हैं जिनकी लाल सतह पर सफेद रंग से चित्रण किए गए हैं। बलूचिस्तान तथा गुजरात में प्राक हड़प्पा संस्कृति के स्तरों से तृतीय सहस्राब्दी के संदर्भ में ऐसे पात्र मिले हैं। औजार, उपकरण तथा अन्य पुरानिधियाँ। आहार संस्कृति के लोग तांबे के उपकरण बनाने की कला से परिचित थे। सिंधु सभ्यता और ऊपरी गंगा घाटी के ताम्र निधियों के बाद आहार संस्कृति के स्तरों से आहार तथा बालाथल से सर्वाधिक पृष्ठ संख्या 457 चित्र 8 बालाथल ताम्र उपकरण सौजन्य बीएन मिश्र एवं अन्य 1995 ताम्र उपकरण उपलब्ध हुए हैं जो तांबे की चद्दर की पीट को पीट कर बनाए गए हैं। ताम्र उपकरणों में चिपटी कुल्हाड़ियाँ, छुरियाँ, चाकू, चूड़ियाँ, छल्ले या मुद्रिकाएँ और छड़े आदि उल्लेखनीय हैं। आहार संस्कृति के लोग खेतड़ी, झुंझुनू की खानों से संभवतः तांबा प्राप्त करते थे। इसके अलावा रतन चंद्र अग्रवाल ने आहार से लगभग 12 किमी की दूरी पर मतून तथा उमरा नामक स्थानों पर तांबे को गलाने के साक्ष्य खोज निकाले हैं। तांबे के सहज सुलभ होने के कारण आहार तथा बालाथल के लोगों के लघु पाषाण उपकरणों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी। तांबे को गलाने के लिए एक भट्टी का साक्ष्य बालाथल से मिला है। काथा नामक पुरास्थल से लघु पाषाणिक उपकरण पर्याप्त मात्रा में मिले हैं। माणिक्य तथा सिलखड़ी के बने हुए मनकों का उल्लेख अन्य महत्वपूर्ण पुरानिधियों के रूप में किया जा सकता है। आहार और गिलुंड के मनकों पर ज्यामितीय अलंकरण तथा पशु आकृतियों का अंकन इनकी अपनी खास विशेषताएं हैं। लंबे सींग वाले बैलों की लघु मृणमूर्तियां आहार तथा बालाथल से मिली हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मरमी नामक ताम्रपाषाणिक पुरास्थल के अन्वेषण से बैलों की मिट्टी की मृणमूर्तियां मिली हैं। विविध प्रकार के सिर वाली गोटे गेंसमेन आहार से प्राप्त हुई हैं। एक गोट का ऊपरी सिरा मेढ़े का है। तरकु चक्रों स्पैंडल वॉल्स में उत्कीर्ण करके अलंकरण बनाए गए हैं। पृष्ठ संख्या 458। मकान। आहार संस्कृति के लोग अपने भवनों के निर्माण में पत्थर और मिट्टी का प्रयोग करते थे। प्रस्तर खंडों का प्रयोग केवल नीचे के केवल नींव के लिए ही किया जाता था। आहार तथा कायथा नामक पुरास्थलों के मकानों की दीवारें संभवतः मिट्टी की बनाई जाती थी। बालाथल में पत्थर तथा कच्ची मिट्टी कच्ची ईंटों की बनाई जाती थी। काली मिट्टी में पीली गाद मिट्टी का मिश्रण करके फर्श का निर्माण किया जाता था। आहार में भवन निर्माण के 15 उपकालों के साक्ष्य मिले हैं। बालाथल से भी भवन निर्माण के अनेक उपकाल ज्ञात हुए हैं। यद्यपि उत्खनन से भवन का पूरा आकार नहीं ज्ञात हुआ है, तथापि बालाथल से जो साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कम से कम कुछ मकान काफी बड़े थे। भवनों का आकार आयताकार या वर्गाकार है। बालाथल से 10 से अधिक भवनों की आंशिक रूपरेखा के विषय में जानकारी मिली है। आहार तथा बालाथल में मकानों के अंदर चूल्हों के अस्तित्व के साक्ष्य मिले हैं। कुछ चूल्हे तो काफी बड़े हैं। आहार में एक मकान में एक ही चित्र 9 बालाथल मकान के अंदर विद्यमान चूल्हा सौजन्य बीएन मिश्र एवं अन्य 1995। कतार में 6 चूल्हे मिले हैं। कुछ मकानों में खाद्य पदार्थ पीसने के काम आने वाली सीले भी प्रायः रसोई घर में चूल्हों के समीप ही प्राप्त हुई हैं। क्वार्ट्जाइट तथा बलुआ पत्थर से निर्मित इन सीलों पर शुरू में समतल लोढ़ों का प्रयोग किया जाता था। पृष्ठ संख्या 459। लेकिन बाद में उन्नतोदार लोढ़े प्रयुक्त होने लगे थे। मकानों का छाजन या छप्पर बांस बल्लियों तथा घास फूस का संभवतः बनाया जाता था। स्तंभ गर्तों के कतिपय साक्ष्यों से यह इंगित होता है कि कुछ मकानों की दीवारें बांस बल्ली की बनाई जाती थी। गिलुंड के उत्खनन से मकानों के निर्माण में पकी ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य भी मिले हैं। गिलुंड में बड़ी इमारतों के अवशेष अधिक मिले हैं। गिलुंड से 9 मीटर लंबे और 4.50 मीटर चौड़े एक कमरे के संबंध में जानकारी मिली है तथा 10.80 मीटर लंबी एक दीवार प्रकाश में आई है। पत्थरों की नींव पर भट्ठे में पकाई गई 35×15×12.5 सेमी आकार की ईंटों से निर्मित एक इमारत प्रकाश में आई है। सैंधव सभ्यता के अतिरिक्त किसी ताम्रपाषाणिक संस्कृति में भवनों के निर्माण में पकी ईंटों का प्रयोग सचमुच विशेष महत्वपूर्ण है। कृषि तथा पशुपालन। आहाट के लोग खेतिहर तथा पशुपालक थे। आहाट नामक पुरास्थल से प्राप्त पात्र खंडों में धान के कार्बनीकृत अधजले दानों भूसी एवं पुआल की छापे मिलती हैं। इस प्रकार आहाट के लोग धान की खेती निश्चित रूप से करते थे। बालाथल से धान चना तथा मूंग जौ और गेहूं की कृषि के प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं। आहाट से गाय बैल भैंस भेड़ बकरी तथा सुअर आदि पालतू पशुओं के साक्ष्य मिले हैं। बालाथल से भी ऐसे ही साक्ष्य मिले हैं। बालाथल के लोग जिन जंगली पशुओं का शिकार करते थे उनमें हिरण चीतल सांभर नील गाय और जंगली पशुओं का शिकार करते थे उनमें हिरण उनमें हिरण चीतल सांभर नीलगाय और जंगली प्रमुख सुअर प्रमुख हैं। नेवला चूहा कछुआ तथा मछलियों की हड्डियों के अतिरिक्त चिड़ियों की भी हड्डियां बालाथल से प्राप्त हुई हैं। बालाथल के उत्खनन से आर्थिक क्रियाकलापों पर विशेष प्रकाश पड़ा है। कालानुक्रम आहार के ताम्रपाषाणिक संस्कृति के तिथि क्रम के संबंध में अपेक्षाकृत हमें पर्याप्त जानकारी प्राप्त है। बालाथल ने से भी कालानुक्रम पर नया प्रकाश पड़ा। उपलब्ध साक्ष्यों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है। प्रथम वर्ग में वे प्रमाण आते हैं जिन्हें पुरातात्विक साक्ष्य कह सकते हैं। दूसरी श्रेणी में कतिपय रेडियो कार्बन तिथियां आती हैं जो इस संस्कृति के लिए निरपेक्ष तिथियां प्रस्तावित करती हैं। पुरातात्विक स्तर विन्यास पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आहाट संस्कृति मालवा संस्कृति से पहले की है क्योंकि आहाट संस्कृति में श्वेत रंग से चित्रित कृष्ण लोहित पात्र खंड अधिक संख्या में उपलब्ध होते हैं और चित्रण अभिप्रायों में विविधता दृष्टिगोचर होती है। आहाट संस्कृति में इस तरह के पात्र खंड इस ताम्रपाषाणिक संस्कृति के प्रथम चरण से लेकर अंतिम चरण तक मिलते हैं। मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति में श्वेत रंग से चित्रित कृष्ण लोहित पात्र खंडों का प्रसार संस्कृति के निचले स्तरों तक ही सीमित दिखलाई पड़ता है। कायथा के उत्खनन से अब उपर्युक्त बात स्पष्ट हो गई है। कायथा के पूरा स्थल पर जिन पृष्ठ संख्या 460 3 ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के पुरावशेष मिले हैं उनमें श्वेत चित्रित कृष्ण लोहित पात्र परंपरा मालवा पात्र परंपरा के पहले के स्तरों से प्रकाश में आई हैं। ऐसे स्थिति में कायथा संस्कृति के अंत के लिए जो तिथि प्रस्तावित होगी वह आहार संस्कृति की प्राचीनतम सीमा रेखा होगी। आहार संस्कृति निश्चय ही मालवा संस्कृति से पहले की है। हड़प्पा संस्कृति की पात्र परंपराओं के नमूने बालाथल के ताम्रास्म मध्यवर्ती स्तरों से प्राप्त हुए हैं। रेडियो कार्बन तिथियां आहाड और कायथा नामक पुरास्थलों से इस संस्कृति से संबंधित स्तरों से 9 रेडियो कार्बन तिथियां उपलब्ध है। रेडियो कार्बन तिथियों की एक व्याख्या के अनुसार आहाड संस्कृति की सीमा 1700 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक निर्धारित की जा सकती है। बालाथल के ताम्रपाषाणिक स्तरों से 4 रेडियो कार्बन तिथियां अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के सौजन्य से प्राप्त है। इनमें 3 तिथियां ताम्रपाषाणिक काल के मध्यवर्ती स्तरों से हैं जो 2350 से 2300 ईसा पूर्व के बीच हैं। ताम्रपाषाणिक स्तर से प्राप्त एकमात्र तिथि के आधार पर इसका अंत लगभग 1800 ईसा पूर्व में हुआ। इस प्रकार 2500 से 1800 ईसा पूर्व के मध्य बालाथल के ताम्रपाषाणिक काल की तिथि निर्धारित की जा सकती है। आहार संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में चाक पर बने सुंदर मृदभांड, लघु पाषाण उपकरणों का अभाव, धातु शोधन का ज्ञान, अच्छे तथा सुदृढ़ आधार वाले भवनों के निर्माण इत्यादि की गणना की जा सकती है। एसडी सांकलिया ने इन्हीं कारणों से आहार संस्कृति को ताम्रपाषाणिक न कहकर केवल ताम्र संस्कृति की संज्ञा प्रदान की है। आहार संस्कृति भारत की अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से कुछ भिन्न है। आहार संस्कृति का उद्भव। आहार संस्कृति के उद्भव पर विकास करते समय इस बात का ध्यान देना होगा कि इस संस्कृति के अधिकांश पुरास्थल एक क्षेत्र विशेष में ही दिखलाई देते हैं। इनका विस्तार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ही मिलता है। इस आधार पर यह संभावना प्रकट की जा सकती है कि यह एक क्षेत्रीय संस्कृति रही होगी। आहार संस्कृति के उद्भव की समीक्षा करते समय कुछ अन्य बातों पर ध्यान देना होगा। इस संस्कृति के लोग उपर्युक्त क्षेत्र में चाहे जहां कहीं से भी आए हों, वे अपने साथ एक विशिष्ट पात्र परंपरा, तांबे के उपकरण बनाने का तकनीकी ज्ञान और अपेक्षाकृत विशाल आकार के भवनों के निर्माण की योजना लेकर आए थे। आरंभ में कुछ पुराविदों ने इस संस्कृति के उद्भव के लिए सिंधु सभ्यता की ओर संकेत किया था। सिंधु सभ्यता निश्चय ही आहार संस्कृति से पहले की है और सिंधु सभ्यता का प्रसार क्षेत्र आहार संस्कृति के वितरण क्षेत्र से बहुत दूर नहीं है। कुछ अन्य पुरातात्विक साक्ष्य भी इस संदर्भ में उल्लिखित किए गए हैं। उदाहरणार्थ पृष्ठ संख्या 461, एक सिंधु सभ्यता में साधार तस्तरी प्राप्त होती है। साधार तस्तरी आहार संस्कृति में भी मिलती है। दो, इसके अतिरिक्त गिलुंड से पकी ईंटों की बनी हुई दीवार प्रकाश में आई है। भारत में सिंधु सभ्यता ही एकमात्र कांस्यकालीन ऐसी सभ्यता है जिसमें भवनों के निर्माण के लिए पकी हुई ईंटों का बहुतायत के साथ प्रयोग किया गया है। अतः आरंभ में यह सहज स्वाभाविक लगा कि गिलुंड के निर्माताओं ने पक्की ईंटों के भवन निर्माण की कला सिंधु सभ्यता से सीखी होगी। तीन, इन साक्ष्यों के अतिरिक्त सिंधु सभ्यता और आहार संस्कृति दोनों में तांबे की बनी हुई चिपटी कुल्हाड़ियां भी प्राप्त होती हैं। दोनों ही संस्कृतियों के निर्माताओं ने एक ही क्षेत्र खेतड़ी की खानों से संभवतः तांबा प्राप्त किया था। चार, बालाथल के मध्यवर्ती स्तरों से सिंधु सभ्यता की पात्र परंपरा के नमूने भी मिले हैं जो गुजरात से संपर्क के सूचक हैं। पांच, आहार तथा बालाथल की कतिपय पात्र परंपराओं में उल्लेखनीय अंतर मिलते हैं। उदाहरण के लिए लाल रंग की पतली पात्र परंपरा आहार में अत्यल्प मात्रा में मिलती है जबकि बालाथल में इसका प्रतिशत लगभग 12% से 15% तक है। बालाथल की धूसर पात्र परंपरा में हस्तनिर्मित तवा मिले हैं। इन साक्ष्यों को छोड़कर आहार संस्कृति तथा सिंधु सभ्यता के बीच कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो दोनों में समान हो। उपर्युक्त तथा कथित समान तत्वों के विषय में पुराविदों ने प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। जब सिंधु सभ्यता आरंभ में उद्घटित हुई तब पुराविदों ने यह कहा कि साधारण तस्तरी सिंधु सभ्यता के निर्णायक तत्वों में से एक है। जिस समय यह बात कही गई थी तब से लेकर अब तक में हमें न केवल सिंधु सभ्यता अपितु प्राक सिंधु संस्कृति तथा उत्तर हड़प्पा संस्कृति के संबंध में अपेक्षाकृत पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो चुकी है। नए साक्ष्यों के आलोक में साधारण तस्तरी अब सिंधु सभ्यता की ही खास विशिष्टता प्रतीत नहीं होती है। इस तरह के पात्र प्राक सिंधु और उत्तर सिंधु संस्कृतियों से भी मिले हैं। ऐसे ही संदेह गिलुंड से प्राप्त ईंटों के दीवालों के संदर्भ में भी व्यक्त किए गए हैं। इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि गिलुंड की विवेच्य दीवार आहार संस्कृति के आरंभिक स्तर से संबंधित न होकर मध्य स्तर से संबद्ध है। यही बात सिंधु सभ्यता तथा आहार संस्कृति की तांबे की चिपटी कुल्हाड़ियों के संबंध में भी कही जा सकती है। इस प्रकार की कुल्हाड़ियाँ प्राग तथा उत्तर सैंदो संस्कृतियों से भी प्राप्त हुई हैं। तकनीकी दृष्टि से इस प्रकार की कुल्हाड़ियों की कोई खास अहमियत नहीं है। सिंधु सभ्यता तथा आहार संस्कृति की विभिन्नताओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। आहार संस्कृति और सिंधु सभ्यता की प्रमुख पात्र परंपराओं तथा बर्तन प्रकार क्यों नहीं मिलते हैं? दोनों पृष्ठ संख्या 462 ही पात्र परंपराओं के चित्रण अभिप्राय अलग अलग हैं। यही नहीं, सैंदो लिपि वाली मुहरें आहार में नहीं मिलती हैं। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में देशलपुर और सुरकुर्दा तथा धौलावीरा के उत्खननों से सिंधु सभ्यता के विषय में कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई है। देशलपुर के उत्खननों से सिंधु सभ्यता के देशलपुर के उत्खनन में एक ही सांस्कृतिक धरातल को दो भागों में बांटा गया है, प्रथम अ एवं प्रथम ब। प्रथम अ काल के स्तरों से सिंधु सभ्यता के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। प्रथम ब काल के स्तरों से सिंधु सभ्यता के पुरावशेषों के साथ ही साथ चित्रित कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा के कटोरों, तस्तरियों आदि के पात्र खंड मिले हैं, जिन्हें काले, बैगनी, लाल तथा भूरे रंगों से चित्रित किया गया है। यही नहीं, ये चित्रण अभिप्राय तथा पात्र प्रकार आहार संस्कृति की चित्रित कृष्ण लोहित पात्र परंपरा से मिलते जुलते हैं। इसी प्रकार सुरकोटदा के उत्खनन से प्राप्त एकाकी सिंधु संस्कृति को तीन चरणों में विभाजित किया गया है, एक प्रथम अ, दो प्रथम ब एवं तीन प्रथम स। प्रथम अ में विशुद्ध सिंधु सभ्यता के पुरावशेष मिलते हैं, लेकिन प्रथम ब चरण में पहुँचते पहुँचते पात्र परंपरा में कुछ परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। इस चरण में भी सैंधव पात्र परंपरा चलती रहती है। प्रथम स चरण के स्तरों तक पहुँचने पर सैंधव पात्र खंडों के साथ साथ चित्रित कृष्ण लोहित पात्र खंड भी मिलने लगते हैं। इस प्रकार सुरकोटदा का वह प्रथम स चरण देशलपुर के प्रथम ब का समकालिक प्रतीत होता है। भविष्य में यदि कुछ अन्य पुरास्थलों के उत्खनन से देशलपुर तथा सुरकोटदा के पुरास्थलों से उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों का समर्थन हो जाए तो इस बात की संभावना काफी बढ़ जाएगी कि आहार तथा बालाथल की ताम्रपाषाणिक संस्कृति तथा सिंधु सभ्यता के निर्माता एक दूसरे के संपर्क में आए रहे होंगे। इस दिशा में विशेष अनुसंधान की आवश्यकता है। सिंधु सभ्यता के संपर्क में आने से पूर्व ही मेवाड़ के क्षेत्र में कृषक समाज अस्तित्व में आ चुका था। एसडी सांकलिया ने आहार संस्कृति के अभ्युदय के लिए कुछ बाह्य प्रभावों की ओर संकेत किया था। आहार से मिट्टी के पके हुए ऐसे मनके प्राप्त हुए हैं जिनके ऊपर अलंकरण उत्कीर्ण है। मिट्टी के इन मनकों का सादृश्य एशिया माइनर टर्की के त्राय नामक पुरास्थल से प्राप्त नमूनों से स्थापित किया गया था। इसी प्रकार पशु शीर्ष वाले हत्थों का पश्चिमी एशिया के साह तेपे एवं तेपे हिसार के नमूनों से साम्य देखने का प्रयास किया गया था। इस प्रकार आहार संस्कृति के मुख्यतः दो तत्व दिखलाई पड़ते हैं, एक स्थानीय तत्व देशी तत्व। दो पश्चिमी लोगों ने पश्चिमी एशियाई क्षेत्र के विदेशी तत्व। यदि यह मान लिया जाए कि आहार संस्कृति के लोगों ने कृष्ण लोहित पात्र परंपरा की जानकारी किसी बाह्य संपर्क में आकर प्राप्त किया हो तो हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा कि आहार संस्कृति के आविर्भाव के समय अथवा उसके पहले पश्चिमी एशिया में कहीं पर कृष्ण लोहित पात्र परंपरा में उसी प्रकार पृष्ठ संख्या 463 के पात्र बनते थे जैसे आहार में बनते थे तथा चित्रण अभिप्रायों में भी समानता थी। अभी तक पश्चिमी एशिया के किसी भी उत्खनित पुरास्थल से इस प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। अनव तथा ट्राय के सादृश्य के आधार पर ही यह संभावना प्रकट की गई थी कि इस संस्कृति के निर्माता आर्य भाषा भाषी लोग थे। ये लोग जब भारत में आए तो अपने साथ पश्चिमी एशिया के कुछ सांस्कृतिक उपादानों को भी लेते आए। गुजरात क्षेत्र की सिंधु सभ्यता के संपर्क में आने पर इस सभ्यता से भी प्रभावित हुए और सिंधु सभ्यता के कुछ उपादानों को भी अपना लिया। ज्ञान की वर्तमान अवस्था में इस मत के पक्ष तथा विपक्ष की निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है। यह कहा जा सकता है कि आहार तथा बालाथल की ताम्रपाषाणिक संस्कृति के निर्माण में एक से अधिक तत्व उत्तरदायी रहे होंगे। भारत के नवपाषाण तथा ताम्रपाषाण काल में लघु पाषाण उपकरण प्रचलित थे। आहार तथा बालाथल के पुरास्थलों के अपवाद को छोड़कर आहार संस्कृति के शेष अन्य पुरास्थलों पर मिलने वाले लघु पाषाण उपकरणों का इतिहास ज्ञात किया जा सकता है। आहार की श्वेत चित्रित कृष्ण लोहित पात्र परंपरा का उच्च सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों में खोजा जा सकता है, जहाँ इस प्रकार के पात्रखंड सिंधु सभ्यता के मृदभांडों के साथ साथ मिलते हैं। आहार संस्कृति के लोगों ने अपनी संस्कृति के विविध तत्वों को भले ही विभिन्न स्तरों से लिया हो, लेकिन दक्षिण पूर्व राजस्थान और मध्य प्रदेश के मालवा के विस्तृत क्षेत्र में मिलने वाली इस ताम्रपाषाणिक संस्कृति का स्वरूप आज भी नितांत मौलिक लगता है। मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति। मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लिए यदि पुरातत्व की मानक शब्दावली का प्रयोग किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता और आहार संस्कृति की तरह इनको नवदा टोली ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहना अधिक समीचीन होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित नवदा टोली और माहेश्वर के उत्खननों से सर्वप्रथम इस संस्कृति का विशिष्ट स्वरूप ज्ञात हुआ। नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर नवदा टोली 20 डिग्री 11 इंच उत्तर अक्षांश 75 डिग्री 36 इंच पूर्व देशांतर और उत्तरी तट पर माहेश्वर नामक पुरास्थल स्थित है। दक्कन कॉलेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे तथा एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा ने यहाँ पर विस्तृत पैमाने पर उत्खनन सन 1952-54 और 1957-59 में कराया, जिसके फलस्वरूप 5 सांस्कृतिक कालों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। अब तक इस संस्कृति से संबंधित अनेक पुरास्थलों का उत्खनन हो चुका है। मध्य प्रदेश से के नवदा टोली, माहेश्वर, नागदा, कायथा, एरण, मनोती और डंगवाड़ा उल्लेखनीय है। मालवा संस्कृति के मृदभांड महाराष्ट्र प्रदेश के बहाल, सानेगांव, चंदौली, प्रकाश, इनामगांव और दायमाबाद से पृष्ठ संख्या 464 भी उपलब्ध हुए हैं, लेकिन दायमाबाद के पुरास्थलों को छोड़कर से सभी पुरास्थलों से मालवा संस्कृति की विशिष्ट पात्र परंपरा के साथ ही साथ जोरवे संस्कृति के पात्र खंड भी उपलब्ध हुए हैं। दायमाबाद के उत्खनन से ज्ञात हुआ है कि पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र में जोरवे संस्कृति के आविर्भाव के पहले ही मालवा संस्कृति का प्रसार हो चुका था। इन समस्त पुरास्थलों के उत्खनन से मालवा संस्कृति का जो स्वरूप हमारे सामने आता है, उसकी झांकी सर्वप्रथम हमें मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में स्थित नवदा टोली तथा महेश्वर के उत्खनन के फलस्वरूप देखने को मिली। इसके पश्चात अन्य अनेक पुरास्थलों से भी इसी प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हुए, लेकिन मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति के संबंध में हमारी जानकारी अभी भी नवदा टोली के उत्खनन पर ही प्रधान रूपेण आधारित है। नवदा टोली के उत्खनन से मालवा संस्कृति के 4 चरण पात्र परंपरा के आधार पर उद्घाटित हुए हैं। प्रथम चरण में एक विशिष्ट प्रकार की मृदभांड परंपरा थी। काले रंग से चित्रित लाल रंग की पात्र परंपरा, जिसे भारतीय पुरातत्व में मालवा पात्र परंपरा के नाम से अभिहित किया जाता है। संस्कृति के द्वितीय चरण में श्वेत चित्रित कृष्ण लोहित पात्र परंपरा समाप्त हो जाती है, लेकिन प्रथम उपकाल की अन्य पात्र परंपराएं चलती रहती हैं। इस उपकाल का अंत एक भीषण अग्निकांड से हुआ। तृतीय चरण में दुधिया पात्र परंपरा समाप्त हो जाती है। अन्य पात्र परंपराओं के साथ जोरवे पात्र परंपरा के टोटीदार पात्र मिलने लगते हैं। चतुर्थ चरण में उपर्युक्त पात्र परंपराएं चलती रहती हैं, साथ ही साथ मटकों में चिपकवा अलंकरण मिलने लगते हैं। मृदभांड परंपराएं। मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति में मुख्यतः 4 प्रकार की पात्र परंपराएं प्रचलित थी, जिनमें से हल्के लाल रंग का लाल रंग या गुलाबी रंग की मृदभांड परंपरा को जिसके ऊपर काले रंग में चित्रण अभिप्राय संजोए गए हैं, इस संस्कृति की विशिष्ट पात्र परंपरा माना जा सकता है। इसे मालवा मृदभांड परंपरा की संज्ञा भी दी जाती है। मालवा संस्कृति के प्रमुख पात्र प्रकारों में साधारण तस्तरियां, पेटीदार कटोरे, तसले, छिछली थालियां, लोटे, घड़े तथा मटके आदि हैं। मालवा पात्र परंपरा के मृदभांड ताम्र पाषाण काल के सभी चरणों में मिलते हैं। इन मृदभांडों पर ज्यामिति और प्राकृतिक दोनों प्रकार के अलंकरण अभिप्राय संजोए हुए मिलते हैं। प्रमुख अलंकरणों में त्रिभुज, जालक युक्त हीरक, लहरदार रेखाएं, संकेंद्री वृत्त, कट्टम कट्टे, एक दूसरे को काटते हुए खड़े तथा पड़े चाप, सूर्य, मानव एवं पशु आकृतियों का उल्लेख किया जा सकता है। चित्रण अभिप्रायों के संयोजन में मालवा संस्कृति के कुंभकारों ने अपनी दक्षता का अच्छा परिचय दिया है, क्योंकि इनके चित्रण में सहज स्वाभाविकता दृष्टिगोचर होती है। पृष्ठ संख्या 465, चित्र 10, नौदा टोली, मृदभांड, सौजन्य सांकलिया एवं अन्य, 1971। प्रथम चरण में मालवा मृदभांडों के अतिरिक्त श्वेत रंग के चित्रण से युक्त कृष्ण लोहित मृदभांड पात्र परंपरा का प्रचलन अल्प मात्रा में मिलता है। श्वेत रंग के चित्रण से युक्त कृष्ण लोहित पात्र केवल प्रथम चरण में ही प्रचलन में थे। श्वेत रंग के चित्रण से युक्त कृष्ण लोहित पात्र परंपरा के बर्तनों में कटोरे, कुल्हड़, कढ़ाई तथा थालियां छोटे आकार के पात्र प्रमुख हैं। इस पात्र परंपरा के ज्यामितीय अलंकरणों में सीधी और वक्र रेखाएं, लहरदार खड़ी रेखाएं, त्रिभुज तथा ठोस हीरक उल्लेखनीय है। तृतीय पात्र परंपरा दुधिया स्लिप वाली मृदभांड परंपरा है, जिसके प्रमुख पात्र प्रकारों में कटोरे, कढ़ाई, साधार कटोरे एवं तस्तरियां प्रमुख हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नृत्यरत मानव समूह, मुड़े हुए सिंगों वाले बकरे, हिरण, वक्र रेखाएं, त्रिभुज, लहरदार खड़ी रेखाएं, ठोस हीरक आदि अलंकरण अभिप्राय सजोए हुए मिलते हैं। चौथी प्रमुख पात्र परंपरा जोरवे मृदभांड परंपरा है, जिसके पात्रों के ऊपर गहरे लाल रंग का प्रलेप दिखलाई पड़ता है। तोटेदार नली वाले बर्तन, छोटी और लंबी गर्दन वाले धड़े, तसले तथा गहरे कटोरे आदि प्रमुख पात्र प्रकार हैं। इस परंपरा के बर्तनों में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि ज्यामितीय अलंकरण। पृष्ठ संख्या 466, रेखाचित्र 11, नौदा टोली, मृदभांड, सौजन्य संकलिया एवं अन्य, 1971 मुख्य रूप से मिलते हैं। मालवा संस्कृति की अन्य पात्र परंपराओं में दूषरित कृष्ण पात्र परंपरा, रुक्ष लाल, काली तथा ताम्र रंग की पात्र परंपरा का उल्लेख किया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 467, औजार, उपकरण तथा पुरानिधियां। मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति में तांबे का उपयोग अपेक्षाकृत सीमित मात्रा में किया जाता था। तांबे के उपकरणों में चिपटी, कुल्हाड़ियां, मत्स्य कांटे, खंजर और चूड़ियां आदि प्राप्त हुई हैं। तंतूर कटक, रेखाचित्र 12, नौदा टोली, तांबे की चिपटी, कुल्हाड़ियां, सौजन्य सांकलिया एवं अन्य, 1971। दंतूर कटक प्रविधि से निर्मित लघु पाषाण उपकरणों नौदा टोली के प्रायः प्रत्येक घर से प्राप्त हुए हैं। इसलिए यह संभावना व्यक्त की जा सकती है कि हर परिवार लघु पाषाण उपकरणों का निर्माण अपनी आवश्यकता अनुसार करता था। नौदा टोली के ताम्र पाषाणिक काल के उपर्युक्त स्तरों से नौ पाषाण काल की प्रस्तर कुल्हाड़ियां भी उपलब्ध हुई हैं। अगेट, जैस्पर, कार्नेलियन, शंख, कांचली, मिट्टी आदि के मनके मिले हैं। ताम्र और मिट्टी की चूड़ियां, तांबे के छल्ले, कुंडल आदि अन्य महत्वपूर्ण पुरानिधियां हैं। पृष्ठ संख्या 468, मकान। इस संस्कृति से संबंधित विभिन्न पुरास्थलों के उत्खनन से आवास के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनसे यह इंगित होता है कि ये लोग अपने मकानों के निर्माण में लकड़ी के लट्ठों का प्रयोग खम्भों के रूप में करते थे। मकानों की दीवारें बांस बल्ली की बनाई जाती थी, जिसमें अंदर और बाहर दोनों ओर से मिट्टी का लेपन कर दिया जाता था। पक्की या कच्ची ईंटों के प्रयोग का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। मकान चौकोर, गोल अथवा वर्गाकार होते थे। कमरों की औसत माप 3×3.40 मीटर मिलती है। कमरों के फर्श को गोबर मिट्टी से लीप पोतकर साफ सुथरा बनाया जाता था। इसके बाद स्वच्छता तथा सफाई के लिए फर्श की चूने से पुताई की जाती थी। मकान पास पास बने होते थे। भवनों के अंदर खाने पीने और अनाज भरने के लिए प्रयुक्त होने वाले मिट्टी के बर्तन, सील बट्टे और चूल्हे मिले हैं। महाराष्ट्र में मालवा संस्कृति के आवास के जो साक्ष्य मिले हैं उनमें विविधता तथा मध्य प्रदेश के साक्ष्यों में भिन्नता भी है। इनाम गांव तथा दायमाबाद के उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य विशेष उल्लेखनीय है। जमीन के ऊपर मिट्टी के दीवार से निर्मित मकानों के अतिरिक्त गर्वयुक्त निवास पिट डिवेल के प्रमाण भी मिलते हैं। चित्र 13, इनाम गांव मालवा काल का गोलकार मकान, सौजन्य धवलीकर, 1988। मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति के लोग प्रायः गोलाकार मकान बनाते थे, जबकि पश्चिमी महाराष्ट्र की मालवा संस्कृति के लोगों ने अधिकांशतः आयताकार मकानों का निर्माण किया है। मालवा संस्कृति के काल के इनाम गांव के 32 मकानों में से 28 पृष्ठ संख्या 469 आयताकार है, एक गोलाकार है तथा 3 गर्तयुक्त मकान है। आयताकार मकानों की दीवालों के कोने गोल आकार के बना दिए जाते थे। मिट्टी की दीवालें बहुत ऊंची नहीं हैं। इन दीवालों के ऊपर जो स्तंभ गर्त मिले हैं उनसे इंगित होता है कि इन दीवालों के ऊपर बांस बल्ली का प्रयोग करके झोपड़ियों की दीवालों को ऊंचा किया जाता था। मकानों की फर्श मिट्टी से निर्मित है। कतिपय घरों के बीच में आंगन के साक्ष्य मिले हैं। मकान सामान्यतः बड़े आकार के होते थे। आयताकार मकान 8×5 मीटर आकार के मिले हैं। अधिकांश मकानों की फर्श पर अंडाकार एक चूल्हा अंदर स्थित मिला है तथा मकान के बाहर भी एक चूल्हा मिला है। इनाम गांव के गर्त युक्त मकान वृत्ताकार थे, जिनमें गड्ढे में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। दायमाबाद से 28 मकानों के साक्ष्य मिले हैं, जिनको कार्यसूचक नाम देकर अनेक वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे कार्यशाला, वर्कशॉप, शिल्पी का मकान, पुरोहित का आवास, धार्मिक भवन तथा अन्य। विभिन्न मकानों के फर्श से प्राप्त पुरावशेषों एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर इस प्रकार का विभाजन किया गया है। कृषि तथा पशुपालन। नौदा टोली की ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोगों का आर्थिक जीवन कृषि तथा पशुपालन पर आधारित था। जौ, गेहूं, चना, मसूर, मटर, धान, मूंग, उड़द आदि खाद्यान्नों की खेती होती थी। पालतू पशुओं में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी आदि प्रमुख पशु थे। हिरण और सुअर की हड्डियों से यह इंगित होता है कि जंगली जानवरों का शिकार किया जाता था। जल जीवों में कछुए तथा मछली की हड्डियां भी मिली हैं। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि मालवा संस्कृति से संबंधित पुरास्थलों से मिलने वाली पशुओं की हड्डियों की मात्रा पश्चिमी महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में स्थित जोरवे संस्कृति के पुरास्थल से प्राप्त हड्डियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। अंत्येष्टि। मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति के लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे, इसके विषय में अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। महाराष्ट्र के क्षेत्र में दफनाकर अंत्येष्टि संस्कार के प्रमाण इनामगांव तथा दायमाबाद की मालवा संस्कृति के स्तरों से मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण भारत की नवपाषाण काल की संस्कृति के संपर्क के फलस्वरूप यह परिवर्तन आया होगा। महाराष्ट्र की मालवा की संस्कृति के संदर्भ में केवल बच्चों के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। वयस्क लोगों के शव विसर्जन के विषय में अभी तक साक्ष्य नहीं मिले हैं। इनाम गांव से 23 तथा दायमाबाद से 16 शवाधान मिले हैं। बच्चे को दफनाने के लिए मिट्टी के बने हुए 2 अंत्येष्टि कलश उपयोग किए जाते थे, जिनमें शव को रखकर कलशों के मुख से मुख जोड़ दिए जाते थे। इनाम गांव से 15 ऐसे उदाहरण मिले हैं। शेष 7 को एक एक घड़ों में भरकर गड्ढे में सिर उत्तर की ओर तथा पैर दक्षिण की ओर करके पृष्ठ संख्या 470 दफनाया गया था। अंत्येष्टि सामग्री के रूप में गड्ढे में मिट्टी के कटोरे तथा टोटीदार पात्र रखे हुए मिले हैं, जिनमें खाद्य तथा पेय पदार्थ रखे गए रहे होंगे। कालानुक्रम, मालवा संस्कृति के कालानुक्रम निर्धारण के लिए सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हैं। कैथा के उत्खनन से ज्ञात हुआ है कि मालवा संस्कृति का विकास आहार संस्कृति के बाद हुआ। महाराष्ट्र प्रांत के दायमाबाद तथा इनामगा नामक पुरास्थलों के उत्खनन से उपलब्ध साक्ष्यों से यह इंगित होता है कि मालवा संस्कृति जोरवे से पहले विकसित हुई। प्रारंभ में एसडी संकलिया ने पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति का समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य आका था। कालांतर में इन्होंने इसको 1200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच में रखने का आग्रह किया। काथा, नौदा, टोली, एरन तथा इनाम गांव से अनेक रेडियो कार्बन तिथियां उपलब्ध है, जिनके आधार पर नौदा टोली की मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति का कालानुक्रम प्रस्तावित किया जा सकता है। नौदा टोली नामक पुरास्थल के ताम्रपाषाणिक काल के स्तरों से 8 रेडियो कार्बन तिथियां प्राप्त हैं, जिनमें से अधिकांश 1600 ईसा पूर्व के आसपास है। यदि इनमें एक मानक विचलन जोड़ दिया जाए तो मालवा संस्कृति के आरंभ की तिथि 1700 ईसा पूर्व प्रस्तावित की जा सकती है। इस प्रकार उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में मालवा संस्कृति का समय 1700 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व के मध्य में माना जा सकता है। मालवा संस्कृति का उद्भव, मालवा संस्कृति के निर्माता कौन थे, यह एक उलझा हुआ प्रश्न है। इस संस्कृति के अधिकांश पुरास्थलों से मानव कंकाल नहीं मिले हैं, इसलिए इसके निर्माताओं की शारीरिक बनावट के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। एसडी सांकलिया ने मालवा संस्कृति के कतिपय पात्र प्रकारों के राम समरूप पश्चिमी एशिया के पुरास्थलों पर खोज निकाले हैं। नौदा टोली के टोटीदार मृदभांडों से मिलते जुलते टोटीदार पात्र श्याल्क ब ज्ञान के प्रथम काल तथा हिसार के तृतीय अ काल से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार साधार कटोरों पर भी ईरान पात्र प्रकारों पर सामूहिक मानव नृत्य के दृश्य को भी पश्चिमी एशिया से अनुप्राणित मानते हैं। इनके अनुसार इस तरह के उदाहरण ईरान के श्याल्क ब एवं चगर बाजार नामक पुरास्थलों से प्राप्त पात्रों पर मिलते हैं। इस आधार पर मालवा संस्कृति के उद्भव के लिए पश्चिमी एशिया की संस्कृति को उत्तरदायी माना जा सकता है। एसआर राव तथा स्वराज्य प्रकाश गुप्ता आदि कतिपय पुरातत्व वेत्ता इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है। ईरान में टोटीदार बर्तनों की तिथि 900 ईसा पूर्व से पहले की नहीं है। ईरान में इन मृदभांडों के साथ लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जबकि मालवा की संस्कृति ताम्रपाषाणिक है और मालवा में यह संस्कृति 900 ईसा पूर्व के पहले ही समाप्त हो चुकी थी। दूसरी कठिनाई यह है कि मालवा संस्कृति में टोटीदार बर्तन उसके पृष्ठ संख्या 471 प्रारंभिक स्तरों से नहीं बल्कि तृतीय चरण से मिलते हैं। उस समय तक मालवा संस्कृति शताब्दियों पुरानी हो चुकी थी। कतिपय पुराविदों की यह मान्यता है कि प्राचीन भारत में साधार कटोरों की एक लंबी परंपरा मिलती है। राजस्थान में कालीबंगा के प्रथम काल तथा सिंध में चानुदड़ों के झूकर काल के स्तरों से इस तरह के पात्रों के उदाहरण मिलते हैं। अगर हम यह मान भी लें कि मालवा संस्कृति के लोग पश्चिमी एशिया से यहाँ आए, तो ऐसी स्थिति में मालवा के उत्तर पश्चिम में ऐसे पुरास्थलों का मिलना आवश्यक है जहाँ से इस संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हो सके। अभी तक ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं। वाई ए जेडने प्रोक्सी नामक रूसी पुराविद ने मालवा संस्कृति की तुलना मध्य एशिया की फरगना घाटी में स्थित चुस्त संस्कृति से किया है। तुलना के लिए कतिपय पात्र प्रकारों तथा चित्रण अभिप्रायों को आधार माना गया है। जेडने प्रोक्सी की इस मान्यता से स्वराज्य प्रकाश गुप्त सहमत नहीं है। चुस्त संस्कृति के लोग किलेबंदी की कला में पारंगत थे, जबकि मालवा संस्कृति में इसका अभाव है। चुस्त संस्कृति के लोग अपने मुर्दों को विधिवत दफनाते थे, जबकि मालवा संस्कृति से संबंधित समाधान अभी तक नहीं मिले हैं। मालवा संस्कृति के उद्भव के लिए भारत की सीमा से बाहर नहीं बल्कि भारत की सीमा के अंदर ही साक्ष्य ढूंढने की आवश्यकता है। मालवा संस्कृति के कतिपय पात्र प्रकार पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में स्थित कायथा नामक पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। यद्यपि इन दोनों संस्कृतियों के बीच समय का व्यवधान है, तथापि यह हो सकता है कि कथा के अतिरिक्त अन्य पुरास्थलों पर दोनों के बीच सांस्कृतिक संपर्क हुआ हो।